हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत और राव्या भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। राव्या ने आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, जो बेहद खूबसूरत थी और ये अनंत की ही पसंद थी। कल सब लड़के ही शॉपिंग पर गए थे और ये सब कुछ रूहान की जिद की वजह से था, क्योंकि उसे अपनी मैडम जी के लिए खुद ड्रेस खरीदनी थी, जिसके बाद अनंत और वेदांत ने भी डिसाइड किया था कि वो दोनों भी उसी के साथ शॉपिंग पर चले जाएंगे। राव्या ने मुस्कुराते हुए खुद को मिरर में देखकर कहा, मिस्टर निमानी, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है मुझ पर। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी साड़ी में भी खूबसूरत लग सकती हूँ। आपको पता है, मैंने सिर्फ मॉडर्न ड्रेस पहनी है। यहाँ आकर मुझे पता चला है कि ट्रेडिशनल ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत होती है। अनाली दी और विहा हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं। वो दोनों मुझे बिल्कुल अप्सराएं लगती हैं। अनंत, जो बेड पर बैठा था, उसने नज़रें उठाकर राव्या की तरफ देखा। अचानक ही उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने वापस पलकें झुका ली। उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। आज की पार्टी के बाद क्या वो कभी उसका पति नहीं रहेगा? उसे मिस्टर निमानी कौन कहेगा? इतने सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। वहीं राव्या ने जब देखा कि उसे देखकर अनंत का चेहरा उदास हो गया है, तो उसने खुद को फिर से अच्छे से मिरर में देखते हुए कहा, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तो मुझे देखकर ऐसे उदास क्यों हो गए हो? अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, मुझे उस प्रोजेक्ट की टेंशन है। मुझे लगता है क्लाइंट को वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, और इस बार तो 50% डिज़ाइन बनाने में तुमने मेरी मदद की है, और रिजेक्शन के बाद तो मेरे पास तुम भी नहीं रहोगी, तो मैं किससे हेल्प लूँगा? बस यही सोचकर थोड़ा मन भारी हो रहा है। बाकी तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, डोंट वरी। और मेरे उदास होने से इसका क्या कनेक्शन है कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो? राव्या के दिमाग से तो ये ख्याल निकल ही चुका था कि कल उसे कोर्ट जाना है। अचानक ही उसने जल्दी से कैलेंडर की तरफ देखा। उसके पास इस शादी को बचाने का बस एक ही दिन बचा था। फिर उसने अनंत की तरफ देखा तो वो फिर से अपने लैपटॉप को देखने लगा था, जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो इस दिवाली में। उसने गहरी सांस ली और फिर तेज़ कदमों से चलकर अनंत के पास गई। वो आहिस्ता से बेड पर बैठी और फिर अनंत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे? हमने अपना 100% दिया है और वो बहुत खूबसूरत भी था। मुझे तो लगता है मेरा ड्रीम हाउस भी कुछ वैसा ही होगा, फिर कैसे रिजेक्शन मिल सकता है? और तुम इतना क्यों सोचते हो? कल जो होगा वो कल देखेंगे, हमें पहले आज पर फोकस करना चाहिए। आज दिवाली है, हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राम जी और सीता मैया आज के दिन वनवास काटकर घर आए थे, लेकिन मुझे लगता है आज के दिन के बाद मुझे वनवास जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? राव्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, वनवास क्यों जाना है तुम्हें? तुम फर्नीचर का साइड बिजनेस करना चाहते हो क्या, जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर लोगे फर्नीचर बनाने के लिए? राव्या की ऐसी बचकानी बात पर अनंत के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, नहीं पागल, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि फिर मुझे वो रूखी सूखी जिंदगी जीनी पड़ेगी जो जंगलों में रहने वाले जीते हैं। मेरे पास हंसाने के लिए तुम नहीं रहोगी ना? जैसे अभी अभी मैं उदास था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। उसके बाद मैं किसकी बातें सुनकर हंसूंगा? वैसे तो मैंने इसका इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता वो रेलेवेंट रहेगा। राव्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, और इसका इंतजाम क्या किया है? अनंत ने अपने मन ही मन कहा, मैं हमेशा गलत वक्त पर गलत चीज़ क्यों बोल देता हूँ? उसने फिर होठों पर छोटी सी स्माइल बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पास कुछ नहीं ऐसा जो तुम्हारी कमी पूरी कर सके या तुम्हारे जोक्स को रिप्लेस कर सके। मेरे पास इंतजाम तो ऐसा था कि फिर मैं कॉमेडी शोज देखूंगा रात के वक्त, या फिर पूरे दिन में जितने वक्त मैं तुमसे बातें करता हूँ उतने वक्त में टीवी देखूंगा। फिर शायद मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम मुझे हंसाने के अलावा तो कुछ ऐसा करती नहीं हो जिससे तुम्हें याद करूँ मैं बैठकर। राव्या, जो उसे कन्विंस करना चाहती थी, उसने जैसे ही सुना कि अनंत उसको सिर्फ एक कॉमेडियन की तरह देखता है, वो जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, देखो अपना कॉमेडी शो, मैं जाती हूँ यहाँ से। इतना बोलकर उसने आखिरी बार मिरर में देखकर अपने बाल सही किए और फिर तेज़ कदमों से कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल, क्योंकि निवेदिता और राधिका मिलकर पूरे निमानी हाउस को डेकोरेट करवा रही थी। करीब 10 से 15 लोग मिलकर लाइटिंग का काम कर रहे थे, तो वहीं विहा और वेदांत सबसे अलग अपने में ही लगे थे। विहा ने वेदांत को फोटोग्राफर समझ रखा था, क्योंकि वो हर डेकोरेशन के सामने जाकर पोज दे रही थी और बेचारा वेदांत उसका फ़ोन लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा था। हर पिक्चर के लिए उसे कम से कम 10 बार फोटो क्लिक करनी पड़ रही थी, क्योंकि विहा हर बार उसकी कमी में उसकी फ़ोटो में कमी निकाल रही थी। कभी उसने एंगल सही नहीं लिया तो कभी फिल्टर अच्छा नहीं लगाया। बेचारा वेदांत मन ही मन सोच रहा था कि उसे क्या क्या बनना पड़ेगा, क्योंकि विहार को स्ट्रीट फूड पसंद है तो उसे शेफ भी बनना पड़ेगा, उसे पिक्चर क्लिक करना इतना पसंद है तो उसे फोटोग्राफर भी बनना पड़ेगा, ऊपर से वो तैयार भी अच्छे से नहीं हो सकती है तो एक तरीके से वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन गया। उन दोनों को देखकर राविया अपनी हंसी रोक नहीं पाई और फिर मुंह पर हाथ रखकर जोरों से हंसने लगी। उसे नहीं पता था कि कोई सीक्रेटली उसकी भी फोटोज क्लिक कर रहा है और वो कोई नहीं बल्कि अनंत ही था। अनंत उसे मुस्कुराते हुए देखकर खुद को उसकी फोटो क्लिक करने से रोक नहीं पाया। उसने फोटो लेने के बाद अपने फोन को देखा और फिर आहिस्ता से उस फोटो को अपने होठों से छूते हुए कहा, तुम वो पहली स्ट्रेंजर हो जिससे बिछड़ने का गम मुझे सबसे ज्यादा होगा। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपना फोन पॉकेट में डालते हुए तेज कदमों से राविया के पास जाकर बोला, कमरे से तो इतनी जल्दी आई थी, जैसे नीचे जाते ही पता नहीं कौन सा तूफान ले आओगी और यहाँ खड़ी होकर बस खींची खी कर रही हो। राविया ने जल्दी से हड़बड़ाकर अनंत की तरफ देखा और फिर गुस्से में कहा, क्यों मैं हंस भी नहीं सकती हूँ क्या? और वैसे भी आज दिवाली है, आज अनाहिदी ने कहा था कि हम किचन में काम सुबह नहीं करेंगे, शाम को करेंगे। सुबह कोई और ही खाना बनाएगा और शाम को हम लोग पकवान बनाएंगे। अब माहिदी ने कहा है तो हम ऐसा ही करने वाले हैं, इसलिए मैं नीचे जाकर कोई तूफान नहीं ला सकती हूँ, वरना तो किचन में जाकर कुछ ऐसा जरूर कर देती जिसके बाद आपकी माताश्री एकदम आग बबूला हो जाती और घर में तूफान आ जाता। वैसे मेरे अंदर तूफान लाने की पावर है, आप मुझे कम मत समझना चाहिए। अनंत ने हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा और फिर धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लगता है विहा के साथ रहकर तुम पर उसका असर हो गया है, कितना बकबक करती हो उसकी तरह। राविया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अब बात बात पर उसे क्यों सुनाने लग जाते हो, वो मेरी बहन है, उसके बारे में एक भी लफ्ज कहा तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अनंत के पास अच्छा टॉपिक था राविया को छेड़ने के लिए, क्योंकि जब जब वो माहिदी और विहा को कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है राविया उस पर गुस्सा झाड़ देती है और फिर उसे चिढ़ाने में अनंत को सबसे ज्यादा मजा आता है। थोड़ी देर बाद अनाही और रूहान भी तैयार होकर नीचे आ गए। उन्हें देखकर तो सब लोग हैरान रह चुके थे क्योंकि उन्होंने एक जैसे कलर की ड्रेस पहनी थी और वो बेहद प्यारे लग रहे थे।
वेदांत को ऐसे फोटो लेता देखकर रूहान ने जल्दी से कहा, मैडम जी आप अपने दोस्त से बोलना कि हमारी फोटोज भी क्लिक कर ले, क्योंकि मुझे आपके साथ कपल पिक्चर चाहिए और हमने फोटोग्राफर भी हायर नहीं किया है। अनाही ने धीरे से रूहान की तरफ देखते हुए कहा, आप खुद क्यों नहीं बोल देते हो अपने भाई से? रूहान ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपको पता है ना कि मैं भैया से बातें नहीं करता हूँ, तो आप क्यों मुझे बोल रही हैं उनसे बोलने के लिए? आप खुद बोल दीजिए ना, आप दोनों की तो इतनी ज्यादा बनती है, वो आपको मना भी नहीं करेंगे। मुझे तो हो सकता है गुस्से में मना कर दें, क्योंकि देखकर लगता है वेहा ने उन्हें बहुत थका दिया है पहले से ही।